नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब 15 उम्मीदवार मैदान में, 5 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए। केंद्र ने राजस्थान में पानी संग्रहण के लिए टांकों की योजना फिर शुरू करने की मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण दूसरे चरण के तहत कराने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस पुनरीक्षण का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी और त्रुटि मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। जीरो अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज टू 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है।
12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन आज 5 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। इनमें निर्दलीय प्रत्याशी अभयदास जांगिड़, सुनीता मीणा, रामपाल मेघवाल, नरोत्तम पारिक और संतोष सुमन शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही जल्द चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। वहीं निर्वाचन विभाग स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस सीट पर मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र ने राजस्थान में पानी संग्रहण के लिए टांकों की योजना को फिर से मंजूरी देकर फंड जारी करने का आदेश दिया है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है।
जो टांके हमारे राजस्थान के अंदर बनते हैं, जिसे पानी का संग्रहण होता है, उसके लिए जो यहाँ से पैसा मिलता है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने उसको दोबारा से जो स्कीम थी उसको पूरे राजस्थान के अंदर टांके बनवाने का आज आदेश किए हैं।
वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने राजस्थान में इस योजना पर लगी रोक हटाने की पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र हर संभव सहयोग करेगा।
आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बधाई दूंगा, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं चलाई है और भारत सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया है। राजस्थान के 8 जिले जहां उत्पादकता एवरेज से कम थी, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता, वो प्रधानमंत्री धनधान कृषि योजना के अंतर्गत उन जिलों को ले लिया गया है और अब 11 विभागों की 36 योजनाओं हम वहाँ फोकस करके लागू करने का काम करेंगे।
इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई योजना में सहायता राशि 20% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है और डीएपी खाद की कमी को तुरंत दूर करने का आश्वासन मिला है। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री वहां प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले पहले राजस्थानी प्रवासी दिवस के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, जिसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस आयोजन का लक्ष्य प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना और उन्हें निवेश तथा राज्य की विकास यात्रा से जोड़ना है। वरिष्ठ आईपीएस गोविंद गुप्ता ने आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। झालाना डूंगरी स्थित एसीबी मुख्यालय पर अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने उनका स्वागत किया। श्री गुप्ता ने कहा कि आमजन के विश्वास को सशक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने और जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायतें सहजता से दर्ज कराएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से बच्चों को किताबें समय पर मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि जल्दी ही सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। भविष्य में शिक्षकों की भी यूनिफॉर्म तय की जाएगी और सबके लिए परिचय पत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना तुरंत अभिभावकों के मोबाइल पर भेजने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन के तहत सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में पीएम किसान निधि के स्टेट नोडल ऑफिस ऑपरेटर सहित कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि वाले 11,000 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी आईडी का दुरूपयोग कर पीएम किसान निधि में अपात्र लोगों के अकाउंट एक्टिवेट कर रहे थे। इसके अलावा गिरोह ने आपदा प्रबंधन पोर्टल से मुआवजा राशि हड़पी और जन आधार तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टलों में भी सेंध मारी कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस अब अवैध संपत्तियों की पहचान कर रही है।
इनिशियली जो हमने शटर डाउन शुरू किया और उसके आज जो खुलासे हो रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये है कि आज 6 लोग गिरफ्तार हुए, 2 डिटेन हुए। जो स्टेट नोडल है पीएम किसान का वो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसने स्टेट की कई सारी आईडीज को कॉम्प्रोमाइज किया। जिस तरह के डाटा निकल के सामने आ रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि बड़े स्तर पर इन कल्याणकारी योजनाओं में कॉम्प्रोमाइज हुआ है और जो लोग लाभार्थी नहीं थे उनको लाभ दिलाया गया और स्टेट एक्सचेकर का और सेंट्रल एक्सचेकर का इन्होंने नुकसान किया। निश्चित तौर पर हम लोग इनकी तय तक जा रहे हैं कि कितनी सारी योजनाओं में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। अगर डाटा की भी बात करें तो अभी भी वृहद स्तर पर इस डाटा का एनालिसिस पार्ट होना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि छठ पर्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व सभी को भगवान सूर्य और छठी मैया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा को अद्वितीय बताया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार करेगा। राज्य में भी इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पाली जिले में बिहारी घाट के तोरण द्वार को रंगोली और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। भरतपुर में भी पूर्वांचल के लोगों ने जलाशयों में डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व को लेकर भरतपुर में बिहार, झारखंड व यूपी पूर्वांचल के रहने वाले लोगों में उत्साह बना हुआ है। व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर परंपरा का निर्वहन किया। जलाशयों के घाटों पर व्रती महिलाओं ने एकत्रित होकर पूजा पाठ कर सूर्य की उपासना की। कल चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन होगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही विभिन्न जिलों में बारिश के समाचार हैं। करौली, बारां, चित्तौड़ सहित कुछ जगह कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं राजधानी जयपुर, माउंट आबू, डूंगरपुर, भरतपुर, डीग, भीलवाड़ा, पाली और आसपास के इलाकों में दिन भर रिमझिम पानी बरसा। दूसरी ओर चूरू, बालोतरा में आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। बाड़मेर में दिन भर तेज हवा चली। इस बीच मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर संभागों और आसपास के जिलों में कल कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आगामी 3-4 दिन बारिश का मौसम रहने के आसार हैं, साथ ही इस कारण तापमान में भी गिरावट होगी।
उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा, यानी आज 27 अक्टूबर को विशेषकर उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं तेज दर्जे की बारिश रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। 28 अक्टूबर को भी इस सिस्टम का असर बारिश के रूप में जारी रहेगा। 29 और 30 अक्टूबर को भारी बारिश में जरूर कमी होगी, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान में जारी रहेंगी।
श्रीगंगानगर जिले ने डीसीएस गिरदावरी और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिले को फार्मर रजिस्ट्री में राज्य में दूसरा स्थान मिला है, जबकि डीसीएस गिरदावरी के लक्ष्य 100% पूरे किए गए हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जिला कलेक्टर डॉ मंजू ने 6 राजस्व अधिकारियों, 7 भू अभिलेख निरीक्षकों और 16 पटवारियों सहित कुल 30 कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दौसा स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार श्यालावास में राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए बंदियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मिट्टी से भव्य प्रतिमा तैयार की है। जेल अधीक्षक पारस जांगीर ने बताया कि बंदियों ने यह कलाकृति जेल परिसर की प्राकृतिक मिट्टी से तैयार की है। जेल में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण, नुक्कड़ नाटक और एकता परेड जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अब 15 उम्मीदवार मैदान में, 5 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए। केंद्र ने राजस्थान में पानी संग्रहण के लिए टांकों की योजना को फिर शुरू करने की मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।